जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनो दधद् व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् श्रृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः क्वचित् किसी समय वनाशाया वन में ही भोजन करने की इच्छा से मनोदधात मन में संकल्प करके प्रातः प्रातः प्रतिदिन जिस समय उठते थे और दिन की अपेक्षा शीघ्र समुत्थाय सम्यक उत्थान करके रात्रि वस्त्र परित्याग करते हुए और श्रीमुख प्रक्षालन आदि करके वयस्य वत्सपान अपने समवयस्क गोपों के साथ अपने समवयस्क गोपों को प्रबोधयान प्रबोधित करते हुए अपने मन के संकल्प को सूचित करते हुए श्रृंग रमेणा सिंह की ध्वनि से चारुणा जो ध्वनि अत्यंत सुंदर थी मनोहर थी विनिर्गतः वत्स पुरह सरह बछड़े जिनके आगे चल रहे थे वे हरिही परम मनोहर श्रीकृष्ण श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्रीकृष्ण की परम मधुर कथा सुना रहे हैं और श्रोताओं में मुख्य हैं परीक्षित महाराज जो अब 3 दिन के बाद शरीर त्याग देंगे। महाराज परीक्षित ने कृष्ण कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को बहुत ही प्रेरित किया था। 7वें अध्याय के प्रारंभ में महाराज परीक्षित की जिज्ञासा व्यक्त की गई है, जहां वे कहते हैं कि भगवान किसी भी अवतार में कोई भी लीला करते हैं तो बहुत ही सुंदर होती है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो उसके विषय में तो कहना ही क्या है। कृष्ण कथा के 5 महाप्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जश्णवत्वपैत रतिर्वितृष्णा सत्वम सुशुद्धेत अचिरेण पुंस भक्तिर हरौ तत्पुरुषेच सख्यम तदेव हारम वदमन्य सेचेत। कृष्ण कथा सुनने पर मन में जो ग्लानी है जीव की वो चले जाती है। ग्लानी का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा से ग्लानी होती है कि हमको ये चीज नहीं है, हमको यह सुख प्राप्त नहीं है, हमको यह वस्तु नहीं मिली है, हाय हाय कब मिलेगी। इस पृथ्वी के भोग की या पद की या अर्थ की जो भी लालसा है और स्वर्ग के भोगों की लालसा अथवा किसी भी प्रकार के वस्तु की कामना है और वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो जीव के भीतर एक ग्लानी रहती है, अपने को वो हीन समझता है। परंतु महाराज परीक्षित कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति श्रीकृष्ण की कथा सुनता है उस समय उसकी ग्लानी अपायती दूर चले जाती, अपयाती भाग जाती है। वह व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि संसार में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। सबसे उत्कृष्ट मूल्यवान वस्तु है कृष्ण कथा। अतः जो व्यक्ति कृष्ण कथाओं को सुनता रहता है तो उसके मन में यह ग्लानी चली जाती है कि हमको कुछ प्राप्त नहीं है, बल्कि वह यह सोचता है कि मैं ही सबसे धनी हूं, मैं ही सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। यह बात कौन कह रहा है? जिस व्यक्ति को ब्राह्मण का श्राप था और वो 3 दिन के बाद ही अब शरीर छोड़ने वाले हैं, वे महाराज परीक्षित अपने विषय में कहते हैं इसी अध्याय के अंत में, वे कहते हैं कि वयम धन्य तमा लोके गुरोपी छत्र बंधव। हे गुरुदेव, हम लोग इस संसार में धन्यतम हैं, सबसे अधिक धनवान हैं। महाराज परीक्षित अपने विषय में कह रहे हैं वयम धन्य तमा लोक। कृष्ण कथा का यह प्रभाव है कि ग्लानी चली जाती है और संसार के भोगों की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमल में प्रीति होती है और उनके भक्तों के साथ सख्य होते हैं। यह कह करके महाराज परीक्षित ने प्रेरित किया सुखदेव गोस्वामी को, कृपया आप हमें कृष्ण कथामृत पिलाइए, कथामृत पिलाइए, यही मेरा जीवन है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल लीलाओं को सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते भगवान श्री कृष्ण की और अन्य सब गोपों की वृंदावन यात्रा का वर्णन किए एकादश अध्याय में दशम स्कंध के। 2 यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के बाद गोपों में एक इष्ट गोष्ठी हुई, ये बहुत संकित हो गए कि बिना आंधी के, बिना भूकंप के या बिना किसी गजराज के द्वारा प्रेरित हुई दोनों वृक्ष गिर कैसे पड़े, बहुत शंका हुई लोगों में। वैसा सोचने लगे कि ये सब उत्पात हो रहे हैं, आज तो 2 वृक्ष गिरे, कल छत गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनको ये पता नहीं था कि ये सब श्री कृष्ण कर रहे हैं, वृक्षों को उखाड़ा था वास्तव में कृष्ण ने अपने कमर में बंधी हुई रस्सी और उखल से, लेकिन गोप इस पर विश्वास नहीं करते थे। इधर बात मत कीजिए, गोप विश्वास नहीं करते थे, जो भी आता था वो पूछता था अरे कैसे वृक्ष गिरे, कैसे गिरे, हाय हाय। कोई जाकर के मूल के तरफ देखता था तो वहां दीमक नहीं लगे थे, कीड़े नहीं लगे थे। जो वृक्ष सहस्रों गजराजों के द्वारा भी उत्पाटित नहीं हो सकते थे वे ऐसे बिना आंधी भूकंप के गिर गए। कुछ बच्चे वहां थे कृष्ण के साथ, उनसे लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने कहा कि ये पहले पूछो कि यहां था कौन जब वृक्ष गिरे, तो पता लगा कि कुछ बच्चे थे। तो बच्चों से पूछो, बच्चों से पूछा गया बेटा बताओ ये दोनों वृक्ष कैसे गिरे, सुनो 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 ये दोनों वृक्ष कैसे गिरे। तो वो लोग कहते हैं यही उखल घसीट रहा था, उखल तिरछा होकर के अटक गया, इसके बाद दोनों वृक्ष गिर गए। तब कुछ लोगों ने कहा ये बच्चे तो कच्ची बुद्धि के है ही, आप पूछते हो तुम्हारी क्या बुद्धि, इन बच्चों से पूछना चाहिए। तो सुनो ये तो कह रहे हैं कि कृष्ण ने गिराया है, मानोगे? तो कहते नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बच्चा जो स्वयं ही सजा भोग रहा है अपने मां के द्वारा, उखल में बांधा गया है, इतना कमजोर बच्चा, अगर वृक्ष उखाड़ना होता तो उखल को ही रस्सी को तोड़ करके नहीं भाग गया होता है, या तोड़ देता ऐसे करके रस्सी को फ्री हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन बच्चों का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है, तुम क्यों पूछ रहे हो, ये पूछने लायक है नहीं विश्वास के। लेकिन कुछ लोग संदिग्ध चेत, कुछ लोगों को संदेह हो गया। जब भी घटनाएं होती है इसी के साथ होती हैं, कोई असुर आता है तो मर जाता है, उस दिन शकट उलट गया था, उस दिन भी बच्चे कहे थे कि यही रोता हुआ पैर उछाला और शकट गिर गया था, उस दिन भी यही कहा था, तृणावर्त मरा इस तरह से, पुतना मरी, हो न हो इस बालक में अलौकिक अद्भुत गुण है, कुछ लोग संदेह में पड़ गए। परंतु उस दिन से गोपों की नींद हराम हो गई एकदम। अब लोग सोचने लगे कि यहां राक्षस आ रहे हैं और वृक्ष गिर रहे हैं, पार्किंग में खड़ा किया गया ट्रक उलट रहा है, शकट उलट रहा है, क्या तमाशा है, धक धक कलेजा करने लगा। और सभी कृष्ण और बलराम की चिंता करते थे। तो एक मीटिंग किए, जिस मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि इस बच्चे की कैसे रक्षा की जाए, बहुत विपत्तियां आ रही हैं। उपनंदन नाम के एक गोप थे जो नंद बाबा के बड़े भाई थे, वे ज्ञान में और उम्र में बहुत बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे और उम्र में भी, देश काल को जानते थे। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह थी कि वे कृष्ण और बलराम में बहुत आसक्त थे वात्सल्य भाव से। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जितना शीघ्र इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, यहां बहुत उत्पात आ रहे हैं, देखो उस दिन वह आई, पुतना आई, इसके बाद शकट उलटा गया, इसके बाद शकट गिर पड़ा और फिर तृणावर्त आया, ये हो रहा है, वृक्ष उखड़ गए। जब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटती है कि बच्चों का नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, इसके पहले ही हम लोगों को यह स्थान छोड़कर चल देना चाहिए। कहां जाएंगे, प्रश्न उठा, बिना किसी डेस्टिनेशन के निश्चय किए बिना मूल स्थान को कैसे छोड़ा जा सकता है, कहीं रहने का स्थान हो तब ना। तो उपनंद महाराज ने कहा कि वृंदावन नाम का एक वन है, पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, वहां पानी है, घास है, नए नए वृक्ष हैं, वहां चले, सब तरह से ठीक रहेगा। जिस दिन उन्होंने कहा उसी दिन गोप सब लाद पाथ करके बैलगाड़ियों पर जैसे तैसे स्त्रियों को, बच्चों को, सामान को और गौओं को आगे हाँक दिए, और कुछ गोप धनुष बाण लेकर के चले, रक्षा करते हुए चले गए। वहां जाने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जब जमुना के किनारा को देखे, कछारों को, जमुना के पुलिन को और गिरिराज गोवर्धन को, वृंदावन को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला। एक दिन उनको अनुमति मिल गई गाय के छोटे छोटे बछड़ों की रक्षा करने के लिए, चराने के लिए। अभी गाय नहीं चरा रहे थे, गायों को चराने के लिए दूर जाना पड़ता था, बड़े बड़े गोप चराते थे। कृष्ण बलराम छोटे छोटे थे, रोज कहते थे गाय चराने जाएंगे, गाय चराने जाएंगे, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारा बल बहुत बढ़ गया है, बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है, हम गाय चरा लेंगे। तो नंद बाबा ने बाध्य होकर के इन लोगों को गाय चराने की अनुमति तो नहीं दिया, लेकिन बछड़ा चराने की अनुमति दी। गौओं के वन में चले जाने के बाद बछड़े जाते थे और गौओं के आने के बहुत पहले ही लौट आते थे, थोड़ी दूर पर बछड़ा चराया करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक दिन जमुना के तट पर वे गए, बछड़ों को पानी पिला रहे थे, तब तक बक के रूप में, बगुला के रूप में एक राक्षस आया था, वो कृष्ण को खा गया। लेकिन कृष्ण उसके कंठ में जलने लगे तो वमन कर दिया, उगल दिया कृष्ण को। इसके बाद चोंच से मारना चाहा तो कृष्ण उसके चोंच को पकड़ करके फाड़ दिए, बहुत बड़े पर्वत के शिखर के समान था। तो बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, बच्चे आकर ब्रज में कहे कि कृष्ण ने आज ये किया, ये किया, ये किया। ये कथा एक 11वें अध्याय तक पूरी हुई है, हम यहां पर 12वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरि ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए सबसे पहला शब्द प्रयोग करें हरि, हरि ही, हरि के ऐसे अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि शब्द अनेक अर्थ, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन दुई मुख्यतम, दो मुख्य अर्थ है। एक है सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान। श्री कृष्ण अपने आश्रित के, अपने भक्तों के सब प्रकार के अमंगल का हरण कर लेते हैं। हरति इति हरि, जो हर ले उसको हरि कहते हैं। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों के अमंगल का हरण करते हैं। सर्व अमंगल हरे, संसारिक दुख दारिद्र से लेकर के संसार बंधन तक सब कुछ श्री कृष्ण हर लेते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, प्रेम दे करके मन हर लेते हैं, अपने बांसुरी से, अपने सौंदर्य से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अनेक लीलाओं से, वे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी तक के मन का हरण कर लेते हैं, वृक्षों के मन का भी हरण करते हैं। इतना सुंदर है, इतना रसिक है, इसलिए इनका नाम है हरि। हरि सब इस महामंत्र में कई बार, आठ बार हरि शब्द का प्रयोग आया, संबोधन में हरे कहते हैं। तो हरि ही एक बार मन में सोचे क्वचित किसी समय, श्रील सुखदेव गोस्वामी कोई वर्ष या महीना या तारीख नहीं बता रहे हैं, क्वचित शब्द क्वचित, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे उस समय की यह लीला है। वनाशाय मनो दधत, एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि आज वन में भोजन करेंगे। वनाशाय, वन आशाय, वनाशाय, वन में भोजन करने की इच्छा से वे प्रातः समुत्थाय, और दिन की अपेक्षा शीघ्र जग गए। बच्चे देर तक सोते हैं, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण जल्दी जग गए। और ऐसा प्रतीत होता है, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि शाम के समय ही अपने साथियों को श्री कृष्ण ने कह दिया था कि कल हम लोग जल्दी चलेंगे वन में, संकेत कर दिया था। तो ये बच्चे भी लगभग प्रतीक्षा में ही थे। तो श्री कृष्ण उठे, उठ करके हाथ पैर धोए, श्रीमुख का प्रक्षालन किए, रात्रि वस्त्र का त्याग किए, नया वस्त्र पहन लिए। यह सम्यक उत्थान का अर्थ है, समुत्थाय, सम उत्थाय, सम्यक उत्थाय। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण रात्रि को जो पैंट पहने हैं वही पैंट पहनकर चल दिए ऑफिस में। रात्रि के समय जो व्यक्ति वस्त्र पहनता है तो वास्तव में वह वस्त्र लगभग कफन जैसा हो जाता है, शरीर मरा हुआ हो जाता है सोने पर, ऐसा माना गया है। तो उस वस्त्र का त्याग करके नया वस्त्र दूसरा धारण करके तब कोई कार्य करना चाहिए। तो वस्त्र पर त्याग करना, उसके पहले हाथ पैर धोना अच्छी तरह से, मुंह धोना, दातुन करना, ब्रश करना, ये सम्यक समुत्थाय। और इसके बाद वे घूम घूम करके सिंह बजा बजा कर अपने साथियों को जगाने लगे। प्रबोधयन सिंह रमेण चारुण, चारु सिंह ध्वनि से, सुंदर सुस्वर से सिंह में अपने साथियों का नाम ले ले करके और संकेत कर रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे। केवल ऐसे नाम लेकर नहीं बुलाते थे, और जब साधारण व्यक्ति भी आंसू कभी हो सकता है, तत्काल कोई विषय दिया जाता है और धारावाहिक कविता में व्यक्ति बोलता है, तो भगवान के लिए कविता में बोलना कौन बड़ी बात। गा रहे थे अपने साथियों का नाम, आज यहां जाएंगे, यहां खेलेंगे, खाएंगे, ऐसे करेंगे, कुछ गा रहे थे, चाहे ब्रजभाषा में गाते हो अथवा संस्कृत में गाते हो, गा रहे थे, द्वार द्वार पर से जगा रहे थे, जगा रहे थे और अपने योजना की सूचना दे रहे थे कि जहां जाना है ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। भगवान कोड बोल रहे थे, दूसरे लोग नहीं समझ रहे थे, उनके सखा समझ रहे थे। श्रीकृष्ण इस कला में इतना कुशल है, जब रास करना हुआ तो भगवान एक गीत गाए बांसुरी में जो केवल गोपियों को सुनाई दिया, बाकी किसी को नहीं। क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। आजकल की बात लीजिए, आदमी जिसको फोन करता है मोबाइल फोन पर उसी को सुनाई पड़ता है, दूसरे को नहीं। जब आदमी ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो भगवान के लिए क्या असंभव है। तो उन्होंने इस तरह बांसुरी में गीत गाया कि गोपियां सुनी। यहां पर सिंह ध्वनि से अपने वयस्क साथियों को जगा रहे थे और उनको अपने मन की योजना सुना रहे थे, यहां चलना है, ये करना है, वो करना है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी मानो उस ध्वनि को सुन रहे हैं, तो कहते हैं चारुणा श्रृंग रवेण, रव का अर्थ ध्वनि, चारु श्रृंग ध्वनि, बहुत सुंदर। और वत्सपुर सरव, भगवान ने फिर वक्षणों को खोला खिरक से, उनको आगे किया। वत्सपुर सरह, वत्स जिनके पुरह सरह आगे चल रहे थे, वे हरि विनिर्गतो, भगवान श्री कृष्ण विनिर्गतो, विशेष रूप से विनोदे न निर्गत, विनोद में निकले, गाते हुए नाचते हुए श्री कृष्ण निकल रहे, आनंद के साथ ब्रज से वक्षणों को आगे करके निकले। वक्षणा चराना भी भगवान के एक आनंद की लीला है। ऐसा नहीं है कि दिन भर अब रूटीन पूरा करने के लिए क्या करें, चराना ही है। वक्षणों को चराना एक आनंद था। विनिर्गत विशेषण निर्गत अथवा विनोदेन निर्गत, विनोद पूर्वक निकल रहे थे। हरि, जब श्री कृष्ण वक्षणा चराते थे तो भगवान के जितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं, खासकर देवताओं में, वे लोग भी बछड़ा बन करके भगवान के वचनों के झुंड में चरते रहते थे। ब्रजभाषा में एक कवि का पद है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वह गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद कुल कदम्ब की डार। हे विधाता, हे ईश्वर, यदि हमको आगे मनुष्य बनाना तो ब्रज गोकुल गांव में मनुष्य बनाना, जहां श्री कृष्ण रहते हैं। मानुष हो तो वह ब्रज को ग्वालों के बीच में बसूं, और पशु यदि बनाना तो कृष्ण जिन गायों को चराते हैं उसी में से मुझे कोई एक गाय बना देना। अगर मुझे पत्थर का शरीर देना, पहाड़ बनाना, तो गिरिराज गोवर्धन की एक शाखा बना देना, जिसको उन्होंने छत्र धारण किया था ब्रज की रक्षा के लिए। और यदि पक्षी बनाना तो ऐसा पक्षी बनाना कि वह पक्षी जमुना के तीर पर किसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठा करें, जब खग हो तो बसेर करो वही कालिंद कुल कदम्ब की डार। तो देवताओं में शक्ति होती है, वे अपनी इच्छा से कोई रूप धारण कर लेते हैं। भगवान जब बछड़ा चरा रहे थे तो देवताओं में लगभग सभी बछड़ा बनकर के आकर के चलते थे। असंख्य बछड़े थे श्री कृष्ण के। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्धेत्र विषाण वेणव। जब भगवान वक्षणों को आगे करके चल रहे थे, निकल रहे थे, तो और भी बच्चे अपने अपने वक्षणों को ले ले करके कृष्ण के वक्षणे में मिला रहे थे, कृष्ण के वक्षणों के साथ कर रहे थे। और असंख्य स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्विता वत्सान पुरस्कृत विनिर्ययुर्मुदा। अपने अपने असंख्य वचनों को कृष्ण के असंख्य वचनों में मिला करके और कृष्ण के साथ हो लेते थे। बछड़े वचनों के साथ मिलते थे और गोप जो थे कृष्ण के साथ मिल जाते। इस तरह से वचनों को लेकर के मुदा विनीर ययुह, मुदा आनंद के साथ निकले। कृष्ण वत्सैर संख्या तैर जूथी कृत्य स्वत्स कान, चारयंतर्भलीला भीर विजरहु स्तत्र तत्र। कृष्ण के असंख्य वशड़े थे, उन असंख्य वशड़ों में अपने अनगिनत वशड़ों को मिला रहे थे। जूथी कृत्य सोवत्सकान, घर से बाहर होते ही कृष्ण के वशड़ों में और अन्य गोपों के वशड़ों में भेद नहीं रह जाता था, सब एक हो जाते थे। इस दृश्य को वे लोग जल्दी समझ सकते हैं जो लोग देखते हैं कि कैसे गौएं गांव से निकलती हैं भिन्न भिन्न घर से और आगे जाकर झुंड में हो जाती हैं, और शाम के समय फिर विभाजन होता जाता है, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। शहर में रहने वाले लोग जो इन दृश्यों को देखे नहीं है उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा समझना कि क्या हो रहा है लेकिन जो इस दृश्य को देखे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे किस तरह से जूथी कृत्य सवत्सकान अपने वशड़ों को कृष्ण के वशड़ों के साथ जूथी कृत्य एक में मिला रहे और चल रहे थे। चारयंत वशड़ों को चराते हुए चल रहे थे, तो क्या करते थे? अर्भ लीला भी, बाल लीला करते रहते थे। बछड़ा क्या चराते थे? हमेशा बाल लीला करते रहते थे। बालक जैसे खेलते हैं ऐसे बछड़ा चराते हुए खेलते रहते थे। बहुत घेरना नहीं पड़ता था बछड़ों को, चरागाह बहुत काफी था, वन पहाड़ नदी सब थे, घास बहुत भरा हुआ था, तो परिश्रम नहीं पड़ता था बच्चों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वे परम आनंद घन श्याम सुंदर के साथ थे, श्रीकृष्ण के साथ थे, अतः बछड़ा चराने में बच्चों का कोई ध्यान नहीं रहता था, केवल कृष्ण के साथ खेलने में उनका मन आविष्ट रहता था सर्वदा। तो सुखदेव जी कहते हैं चार यंत अर्भ लीला भी विजरहुष तत्र तत्र, अर्भ लीला भी वत्सन चार यंत, बछड़ा चराते थे लेकिन बछड़ों को चराने में हमेशा खेलते रहते थे। बच्चे जैसे खेलते हैं विविध प्रकार के खेल, खेल खेलते रहते थे, हमेशा खेलते रहते थे। आगे वर्णन आप लोग पाएंगे सुनेंगे किस तरह वो लोग खेल में व्यस्त। भूषिता या प्यभूषयन, वन में वे लोग अपना श्रृंगार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि घर से श्रृंगार प्राप्त करके आते थे। प्रत्येक माता अपने पुत्र का श्रृंगार करती थी वन में जाने से पहले। काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता, काच और गुंजा घुंघची और मणि हीरा और स्वर्ण, सोने के अलंकार पहनाए जाते थे, सोने के गहने बच्चों को पहनाए जाते थे, हीरे के और काच और गुंजा की माला, तो इस तरह से पहन कर आते थे। बहुत श्रृंगार रहता था, फिर भी वन में आने पर फल प्रवाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु भी, फल प्रवाल सुमन पिच्छ धातु आदि से अपना श्रृंगार करते थे। जब सोने से श्रृंगार किया गया है, अनेक प्रकार के रत्नों से श्रृंगार हुआ है बच्चों का, लेकिन वे वन में आने पर अपना श्रृंगार स्वयं करना चालू करते थे और कृष्ण का श्रृंगार भी सभी करते थे। श्रृंगार में क्या होता था? फल, कोई कोई फल तोड़ करके और खोजते थे पगड़ी में इधर उधर, बहुत सुंदर सुंदर नए नए फल, फल प्रवाल, और प्रवाल का अर्थ है नए नए पत्ते वृक्षों के, प्रवाल लाल लाल पत्ते, उससे श्रृंगार करते थे, पत्ता को खोजते थे या माला बनाते थे। सुमन अस्तबक, अस्तबक का अर्थ होता है ऐसे फूल के गुच्छे जिनमें थोड़े थोड़े पत्ते भी रहते, पत्र रहते, नए नए पत्ते लाल लाल और फूल भी रहते हैं, तो उनको स्तबक कहा जाता है संस्कृत में। स्तबक से श्रृंगार करते थे, बांध लेते थे। सुमना पिच्छ धातु भी, और फूल तथा मोरपंख धारण करते थे, और धातु भी, धातु का अर्थ है वन में जो गेर मिलता है, गेरुआ रंग जिसको कहते हैं, उसको पत्थर पर रगड़ रगड़ करके और चित्रकारी करते थे कृष्ण, और अपने भी चेहरे पर करते थे चित्रकारी करते थे। हरीश्वरी जी इस प्रसंग पर कहते हैं कि देखिए बच्चों का श्रृंगार सोने से किया गया है, हीरे से किया गया है, लेकिन वे यहां आकर के मिट्टी से अपना श्रृंगार कर रहे हैं और पत्ता से, फल फूल से। यह है सज्जनों का स्वभाव, वे लोग सोना में और मिट्टी में भेद नहीं समझते। ये बच्चे ऐसा सोचते थे कि जब तक हम ये धारण नहीं करेंगे हम सुंदर नहीं लगेंगे, उनकी सौम बुद्धि थी। जो सोने चांदी हीरे आदि से जिसका श्रृंगार किया गया हो, क्यों फल पत्ता फूल और गेरू से अपना श्रृंगार करें? तो इस तरह से वे भूषिता अप्यभूषण, यदि भूषिता थे, आभूषित थे अपनी माताओं के द्वारा, फिर भी यहां आकर के वन में वे श्रृंगार करते थे और कई बार दिन में, एक ही बार नहीं। ये तिलक भी कई बार करना चाहिए, जब मिट जाए तब करना चाहिए, यही वैष्णव का आभूषण है। सोना चांदी पहनने से व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है, सुंदर लगता है जब विष्णु का दास बनता है। ये देखा गया है कि लोग बड़े बड़े केश धारण करके उतने सुंदर नहीं लगते हैं जितना केश मुड़ा करके अच्छे लोग लगते हैं, वैष्णव लोग। प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को, खास करके विदेशी लोग, उनका तो केश रखने का कोई ढंग ही नहीं होता, इसलिए उसको काट करके वैष्णव बना दीजिए, यही ठीक है। जब बेढंगा केश रखता है तो हमारे यहां गांव में लोग कहते हैं हिप्पी काट है। हिप्पी काट है, हिप्पी कटिंग। हिप्पी कटिंग मतलब कैसे भी कोई केश काट रहा है और कहीं भी छोड़ दिया तो ये कटिंग हो गया, एक डिजाइन हो जाता है। विदेश में मैं देखा हूं कुछ लोग यहां से यहां तक सीखा जैसा रखते हैं बीच में, तो हमने पूछा कि ये ऐसा क्यों सीखा रखते हैं, तो दूसरे लोग बताए भक्त सीखा नहीं है, बना रहा होगा बार बार छोड़ दिया होगा तो वही एक डिजाइन हो गया, जैसे भी हो जाए उस डिजाइन हो गया। कोई फटा पुराना कपड़ा कई जगह से छेद किया हुआ पहन ले चले तो उसको लोग मांगेंगे हमको भी ऐसा चाहिए, वो एक नया डिजाइन हो गया। अरे डिजाइन ही बनाना है तो तिलक और कंठी धारण करना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्लास का डिजाइन है जो कृष्ण को प्रसन्न करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। ये बच्चे ब्रजरज लगा करके अपना श्रृंगार करते थे, हम लोग गोपी रज लगाते, गोपी तिलक धारण करते हैं। वास्तव में यह देह का सबसे बड़ा श्रृंगार श्रृंगार, जैसे कोई स्त्री सौभाग्य का चिन्ह धारण करती है, कुमकुम सिंदूर धारण करती है, तो उसको देख करके लगता है कि यह किसी की है, यह साध्वी पतिव्रता स्त्री है, सौभाग्यवती है, इसके सौभाग्य का चिन्ह इसका पति है। तो इस तरह से यह तिलक बताता है कि यह कृष्ण का है, स्मरण कराता है, धारण करना चाहिए, अपना सौभाग्य प्रकट करना चाहिए संसार में। वास्तव में हम लोग कृष्ण के हैं, तो बच्चे सब जा करके वृंदावन में, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी ये मिट्टी का तिलक कर रहे और गालों पर ललाट पर चित्रकारी उनकी की जाती थी। ये नहीं समझना चाहिए क्या मिट्टी लगाना है ललाट में, यही जीव की शोभा। तो बच्चे अपना अपना श्रृंगार करते थे, सब कृष्ण का श्रृंगार करते थे, कोई कोई रोक कर कहते थे कृष्ण सुनो 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 ये ठीक नहीं है, मैं बना रहा हूं, तो वो पत्ता को सजाता था, मोरपंख को सजाता था, प्राय बच्चे कहा करते नहीं ये ठीक नहीं हम करेंगे हम करेंगे। तो दिन भर तो कृष्ण को ऐसे बीत जाता था कि श्रृंगार करते करते कब इनका मन पूरा होगा, लेकिन श्री कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य है, ये प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक रूप अलक्षित हो जाते थे। दूसरा बच्चा नहीं जानता था, वो जानता था कि मैं ही चित्रकारी कर रहा हूं कृष्ण को सजा रहा हूं, दूसरे बच्चे को पता नहीं होता था। तो थोड़े ही समय में श्री कृष्ण इस तरह से सबको सौभाग्य देते थे। भगवान सौभाग्य देते हैं अपने श्रृंगार करने का, लेकिन श्रृंगार करने वाले लोग अब अपना श्रृंगार करने में घंटों बिता देते हैं, कृष्ण का नहीं करते हैं। तो ये भगवान का विग्रह अपने घर में रह करके इनका श्रृंगार किया जा सकता है, इनके लिए गीत गाया जा सकता है, आरती की जा सकती है, लेकिन अपने से फुर्सत हो तब न संवारने से। अपना संवारना आदमी नहीं छोड़ पाता। तो इस तरह से बच्चे कृष्ण का श्रृंगार करते थे और अपना भी श्रृंगार करते थे, बारंबार करते रहते थे। मुष्णन्तोऽन्यन्य सिक्यादीन् ज्ञाता नारास्त चिक्षिपुः तत्रस्त्याश्च पुनर्दुराद् हसन्तश्च पुनर्दधुः। बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। क्या लीला करते थे? जैसा पहले कहा गया कि बच्चे सभी श्रीकृष्ण के प्रेमी थे, स्निग्ध थे, अनुगामी थे। वे सदा 24 घंटे कृष्ण के साथ रहना चाहते थे। रात को जब अपने घर जाते थे सोने के लिए, तो उनके लिए वो कल्प जैसी रात बीतती थी बच्चों। कभी कभी तो आधी रात के समय ही यशोदा जी के यहां आकर कहते थे, कन्हैया कन्हैया, बिल्कुल सवेरा हो गया, चलो 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 बछड़ा चलाने, गाय चलाने चलो, ऐसे आकर के कहते थे। मां यशोदा उनको डांटती थी, यही समय है, आधी रात हो रही है और आकर के कहते हो कि चलो चलो वन में चलो। तो बच्चों को तो नींद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो तो कृष्ण के साथ रहना चाहते थे। सोने से पहले भी कृष्ण के पास आकर बैठते थे और चर्चा किया करते थे, दिन में आज ऐसे बछड़ा चराया, ऐसे गाय चराए, ये चराए, वो चराए, चर्चा करते रहते थे। और माँ यशोदा कहती थी, जाओ अपने घर, सोने दो कृष्ण को, घर जाते क्यों नहीं हो? वो बच्चे जाए कैसे? कोटि कोटि प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण साथ में है, तो उनको देखना, उनसे बात करना, दिन भर उनके साथ खेले हैं, कैसे त्याग दे? पर किसी तरह मां के कहने से कृष्ण के सुख के लिए चले जाते। और अभी आधा घंटा सोए तब तक चलो 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 चलो, भोर हो गया, बछड़ा चराने चाहिए। उनको नींद से, भोजन से और बछड़ों से कोई मतलब नहीं था, उनको तो सारा तात्पर्य श्री कृष्ण से था, उन्हीं के साथ 24 घंटा रहना चाहते थे। तो बाल लीला में क्या करते थे? मुष्णन्तो अनन्य सिक्यादीन्, वे साथ में सिक लेकर जाते थे। सिक का अर्थ है सिकहर, जब रस्सी का बना हुआ ऐसे बर्तन को पकड़ने के लिए डंडा में लटका करके जाते हैं, उसको सिक कहते हैं। या घर में स्त्रियां रख देती है कभी घी की रक्षा करने के लिए, दूध की रक्षा करने के लिए, सीलिंग से लटका करके रस्सी का बना हुआ होता है, उसको सिक कहते हैं। और बेत्र, बछड़ों को डरपाने के लिए छोटे छोटे बेत लेकर के बच्चे जाते थे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। तो वो छोटा छोटा बेत, सुसिक, बेत्र, विषाण और सिंह, सिंह में बछड़ों को बुलाने के लिए, या सखा कहीं खो गया हो इधर तो उनका नाम बुलाने के लिए, ही ए कहां हो, ये सब करने के लिए ले जाते। वेणव और वेणु, वेणु में गाने के लिए, ध्वनि करने के लिए। तो क्या करते थे बाल लीला में? कभी कभी किसी के वेणु को चुरा लेते थे। मुष्णन्तो कहते चुरा लेते थे और बाद में कहते थे, अब हम लोग अपना अपना बांसुरी बजावे, अब अपना बेड़ू बजावे। तो सब लोग बजाने लगते थे, जिसकी चोरी गई है वो खोजने लगता था, हमारा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हम नहीं लिए हम नहीं लिए, हम नहीं जानते हैं हम नहीं जानते हैं। ज्ञातन आराश चिकछिपू, लेकिन पता जब लगता था कि उसके पास है तब तक वो दूसरे के पास फेंक देता था। वहां पहुंचने पर तत्रत्यश्च पुनर्दुराद्, वो दूसरी जगह फेंक देता था। इस तरह वो बच्चा हैरान होने लगता था, हमारा दो, रोने रोने जैसा होता था, तब हसंतः पुनर्दधु, हंसते हुए दे देते थे। प्रायः ये लीला करते रहते थे। कोई भोजन का सामान लेकर के आया है सीके पर, गमछे में लटका करके जैसे उसको चुरा लेते थे, तो उसका ध्यान आता था, हमारा क्या हुआ सिंह, हमारा क्या हुआ बेत्र, विषाण, हमारा क्या हुआ। तो उसको रुला मारते थे इस तरह से, वो रोना एक आनंद की बात थी। जब नहीं देते थे तो रोने रोने जैसा हो जाता था, तब हंसते हुए देते, अरे लो लो हम खाने थोड़े जा रहे थे, केवल देख रहे थे कि तुम्हारे सामान लिए हैं तो तुम क्या कर रहे हो। हसंतश्च पुनर्दधु, फिर इस तरह से दे देते थे, प्राय छीनते रहते थे। कभी श्री कृष्ण का बांसुरी चुरा लेते थे, कभी कृष्ण का सिख चुरा लेते थे, वेणु बेत्र विषाण और बेत्र ये सब चुराते थे, और कृष्ण भी इस तरह से रोने लगते थे, और दे दो नहीं तो मैं जा करके माता यशोदा से कहूंगा कि ये सब वन में हमको बहुत तंग करते, तब तो हंसते हुए दे देते थे बच्चे, इस तरह खेलते रहते थे, खेलते रहते थे। यदि दूरम गतः कृष्णो वनसो भेक्षणायतम अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। यदि क्वचित कृष्ण दूरम गतः, यदि कभी कृष्ण दूर चले जाते थे, यदि शब्द बता रहा है कृष्ण दूर नहीं जाते थे लेकिन कदाचित, यदि दूरम गतः कभी दूर चले गए, वन शोभे क्षणाय किसी वन की शोभा देखने के लिए अपने दो चार साथियों के साथ कृष्ण जब दूर चले जाते थे तो उनको खोजने के लिए बच्चे दौड़ते थे उनको देख करके भेंट करने के लिए, और कहते थे अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। बच्चों में प्रतियोगिता होती थी, कंपटीशन होता था, मैं पहले कृष्ण को छूऊंगा, मैं पहले छूऊंगा, और दौड़ते थे जोर से, दौड़ करके और कृष्ण का आलिंगन करते थे। संस्पृश्य रे मिरे, सम्यक स्पृश्य, अपने सखा कृष्ण का पूरा पूरा आलिंगन करते थे और इस तरह रे मिरे परमानंद में मग्न हो जाते थे। इस तरह की प्रतियोगिता कहीं हम लोग सुने? बच्चे दौड़ते थे, धावन करते थे कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक को आलिंगन देते थे, प्रत्येक बच्चा फर्स्ट होता था कृष्ण के लिए, जो भी आता था कृष्ण तो उतने रूप होकर के अलक्षित भाव से आलिंगन करते थे। इस तरह जहां भगवान को भर अंकवार पकड़ करके आनंद लेने की लीला हो रही, कितना बड़ा भाग्य है उन बच्चों का जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। इति संस्पृश्य रे मिरे, संस्पृश्य का अर्थ सम्यक स्पृश्य, गाढ़ आलिंगन करके, और यह कहते हैं मित्र मैं तुमको खोजते खोजते परेशान हो गया, तुम क्यों चले गए थे, कहां चले गए थे। तो श्री कृष्ण वास्तव में आलिंगन का सुख देने के लिए ही कभी कभी दूर चले जाते थे। से कोई व्यक्ति पास नहीं हो चौबीसों घंटे तो आलिंगन की उत्कंठा उतनी नहीं रह जाती, लेकिन थोड़ा मिल मिल करके दो घंटा चार घंटा एक दिन दो दिन बीते तो उत्कंठा बढ़ जाती है आलिंगन की। तो इस तरह से श्रीकृष्ण इस उत्कंठा के वर्धन के लिए कभी कभी दूर होते थे, तो बच्चे दौड़ करके आलिंगन में पकड़ते थे कृष्ण को, और इस तरह रेमिरे, रेमिरे का अर्थ है परमानंदम प्राप्तवंत, परम आनंद प्राप्त करते थे। अरे जिनका नाम लेकर के कथा सुन करके व्यक्ति आनंद में मग्न होता है तो उनको छू करके कितना बड़ा आनंद प्राप्त होगा। सच्चिदानंद घन भगवान जिनको पूरा पूरा अपने छाती से छाती लगाकर बाहों में बाह पकड़ करके और इस तरह से आलिंगन किया जाए, कितना बड़ा सुख। इस संसार में इस जड़ शरीर को पकड़ करके आलिंगन करने का कितना सुख लोग मानते हैं, और भगवान को एक दिन पकड़ने का सौभाग्य मिले तो कितना बड़ा सुख प्राप्त होगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को एक निमंत्रण दे रहे हैं कृष्ण को आलिंगन करने का। वास्तव में भागवत के द्वारा ही पता लगता है कि परम पुरुष परमेश्वर परमानंद भगवान क्या हैं और उनके परिकर कितने सुखी रहते हैं, कितने आनंद में मग्न रहते हैं, ये देखने की बात। ब्रज में ऐसे सबसे उत्कृष्ट रस है गोपी जनों का भाव, माता यशोदा का, नंद बाबा का वात्सल्य भाव, गौओं का सबका, और सखाओं का सख्य रस, ये सब बहुत उत्कृष्ट रस, जहां श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में पा करके और बिना संभ्रम के, बिना संकोच के उनके साथ बोलना, खेलना, आलिंगन करना, कृष्ण को अपना घोड़ा बनाना, कृष्ण के साथ हमेशा प्रतिस्पर्धा करना, ये सब अद्भुत सुख है। तो श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में भगवान की इन लीलाओं का वर्णन किया गया है और वास्तव में भक्तों के लिए यही प्राप्तव्य है। जीवन का यह मनोरथ होना चाहिए कि हे कृष्ण, यह मनुष्य जीवन समाप्त होने पर मैं आपकी नित्य लीला में सम्मिलित हूं। यही मनोरथ, वास्तविक मनोरथ। तो बच्चे इस तरह से खेल रहे थे, अहम पूर्वम इति संस्पृश रे मेरे, अहम पूर्वम, पहले मैं छूंगा, मैं छूंगा, और इतना वेग से दौड़ते थे। और वहां जाने पर कृष्ण बाहें फैला करके खड़े हैं और मैं छू लिया, मैं छू लिया, मैं छू लिया, बताओ मैं छुआ कि नहीं पहले, बताओ तुम ही बताओ। तो सभी यही कहते हैं और कृष्ण कहते हैं हाँ आप पहले मुझे छुए, पहले मुझे छुए, पहले मुझे छुए। तो श्रीकृष्ण का लिंगन जितनी तत्परता से बच्चे करते हैं, जितनी स्प्रिया के साथ, उतनी ही स्प्रिया और लालसा के साथ श्रीकृष्ण अपने शाखाओं का लिंगन करते हैं। वहां जड़ शरीर नहीं है, भगवान के परिकरों का शरीर चिन्मय है, दिव्य है, और भगवान का तो है ही। जीव में और कृष्ण में यह संबंध है, इस संसार का जो संबंध है वो सदा नहीं रहता है, सदा आलिंगन करने लायक शरीर नहीं रहता है। आत्मा यदि शरीर से निकल जाए तो शरीर मृतक कहा जाता है, कोई उसको छूना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। आदमी मरने पर कह देता है मुख पर कफन डाल दो, कपड़ा डाल दो, देखना भी नहीं चाहता, छूने की बात तो दूर रही। छूने पर सचैल स्नान करता है, वस्त्र सहित स्नान करता है, परंतु भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो सदा रहता है, सदा आलिंगन रहेगा, अनंत काल तक उसमें कोई विराम नहीं है। और भक्त और भगवान दोनों का जो स्वरूप है वो नित्य युवक रहता है, नित्य यौवन यौवन से संपन्न, कोई शरीर में विकृति नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, न कोई रोग है, न बुढ़ापा है, न मरण है। निर्वाध रूप से भगवान के साथ खेलने का, उनको चूमने का, उनको छूने का, उनको आलिंगन करने का जो सुख है वहां हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वहां काल नहीं है, कर्म नहीं है, माया के कोई गुण नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ भी नहीं है। वह भगवान का दिव्य धाम है, उसी दिव्य धाम की लीला का दिग्दर्शन सुखदेव गोस्वामी करा रहे हैं। इस तरह से बच्चे श्रीकृष्ण को पकड़ पकड़ कर सुखी रहते हैं। अब श्रीकृष्ण के साथ वे और क्या क्या लीला करते हैं, वन में स्वच्छंद विहार कर रहे हैं, केवल आनंद लीला है। वास्तव कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ लिखा है, आनंद वृंदावन, वृंदावन में आनंद ही आनंद है कृष्ण के साथ, आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं। केचिद वेणुन वादयंत धमांत श्रृंगारी केचन, कुछ बच्चे जहां तहां वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजाने में भी प्रतियोगिता के साथ बजाते हैं कि मैं अच्छा बजा रहा हूं कि तुम अच्छा बजा रहे हो, वे बजाने लगते हैं। तो कुछ बच्चे बांसुरी बजाने लगते हैं, कुछ नाचते हैं, ध्वंत श्रृंगारी केचना, कुछ बच्चे सिंह में ध्वनि कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, बच्चों का नाम लेकर के चाहे जैसे तैसे कुछ सिंह बजाते हैं, कुछ बांसुरी बजा रहे हैं। ये प्राय जब तक वत्स चारण करते रहते हैं या लौटते हैं तब तक करते ही रहते हैं। केचित वेणुन वादयंत, केचित वेणुन वादयंत, वेणुओं को, बांसुरियों को बजाते रहते हैं, और कोई सिंह को फूंकते रहते हैं। धमांत श्रृंगारी केचन, कुछ श्रृंगारी सिंह को बजाते रहते हैं। केचित भृंग प्रगायंत, कुछ बच्चे भौरों के साथ उनके स्वर में स्वर मिला करके गा रहे, भृंग प्रगायंत, भौरे भन 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 बोलते रह, वे मधु पीते हैं और कुछ न कुछ भन 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 बोलते रहते हैं। तो बच्चे कहीं कहीं भौरों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वो भी ऐसे करते रहते, कोई दुख नहीं, वे परम आनंदमय भगवान के साथ हैं। तो श्री कृष्ण जब भंवरे के साथ स्वर मिलाकर के गाते हैं, उनके स्वर मिलाकर तो और भी बच्चे वही करने लगते हैं श्री कृष्ण के देखा देखी। तो भंवरों के साथ गाते हैं जहां तक केचित भृंगई प्रगायंत और कुजंत कोकिले ही पर ही, और कुछ बच्चे कोयल के साथ कूजते हैं। अगर कोयल बोलते हैं कुहू 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 तो ये बच्चों का प्राय स्वभाव होता है, वे उसकी बोली का अनुकरण करते हैं। तो श्री कृष्ण जब कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं तो और बच्चे भी कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं। सूरदास जी ने गाया है कि जब श्री कृष्ण कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं तो कोयल कुहू बोलता है तो कोयल की अपेक्षा कोटि गुना मधुर स्वर श्री कृष्ण का होता है, इसलिए कोयल लजा करके कहीं जाकर छिप जाता है। अरे ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता जितना श्री कृष्ण सुंदर बोल रहे हैं। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कृष्ण तुम मत चिढ़ाओ उसको, वो अपने को हीन मान करके भाग जा रहा है, तुम मत बोलो, इतना श्री कृष्ण सुंदर बोलते हैं। भगवान का यह ऐसा धाम है ब्रज जहां वे किसी रूटीन में नहीं बंधे हैं, पृथ्वी का भार दूर करने की उनको चिंता नहीं है, न तो देवताओं ने उनको रूटीन पेश कर दिया है समयावली की ऐसे ऐसे करना है ये करना है वो करना, कुछ नहीं, न तो देवताओं के रूटीन के अनुसार चलना है, न मनुष्य के मर्यादा के अनुसार। स्वच्छंद घर है भगवान का, दिव्य अपना धाम है, उसमें वे बिल्कुल निराबाध खेल रहे। तो भौरे के साथ गाना, कोयल के साथ कूजना, कभी बांसुरी बजाना और कभी सिंह फूंकना, प्रायः बच्चे करते रहते हैं, उनके साथ श्रीकृष्ण ये सब कर रहे हैं। विच्छाया भी प्रधावंत गच्छंत साधु हंस कही, और कभी कभी कोई कोई बच्चे पक्षी की छाया के साथ दौड़ते हैं, इधर आकाश में पक्षी चल रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं या जा रहे हैं तो बच्चे भी छाया के साथ उसी वेग से चल रहे हैं, अपने हाथ को और दुपट्टा को फहराते हुए ऐसे ऐसे करते हुए चलते, वो तेज गति से, पक्षी तो बहुत तेज गति से चलते हैं, तो ये भी छाया के साथ धावंत, छाया के साथ दौड़ रहे हैं। ये है वत्स चारण, बछड़े तो चर ही रहे हैं, ये क्रीड़ाएं हो रही। वी छाया भी, वी का अर्थ है पक्षी, पक्षियों की छाया के साथ दौड़ रहे हैं। गच्छंत साधु हंस कही, और कहीं कहीं देखते हंस जा रहा है पानी के ऊपर अथवा स्थल पर, तो हंस के चाल के समान ही अपनी चाल से चलते हैं जाते हैं। अगर सरोवर में हंस चल रहा है तो ये तट पर वैसे चलते हैं। गच्छंत साधु हंस कही, साधु का अर्थ अच्छी चाल से, हंस के समान चलते हैं, मंद गति से और मस्त गति से। हम लोग तो हंस देखे नहीं, बत्तख देखे हैं तो हंस की चाल चलते कोई कोई बच्चे, बकाय रूप विषंतश्च, कोई कोई बच्चे बगुला की तरह, बगुला अगर बैठा है ध्यान में मछली पकड़ने के लिए तो बच्चे भी उसके देखा देखी ऐसे ध्यान करते, एक पैर पर बैठ गए, कोई कोई दोनों पैर पर खड़ा होकर, अच्छा तो कोई एक पैर पर खड़ा होकर उपविषमता से उसके निकट बिल्कुल वो ध्यान कर रहा है, बगुला जैसे बैठा है वैसे वे भी बैठे हुए, वो भी आधा नेत्र खोले रहता है, ये भी आधा नेत्र खोले, शब्द नहीं करता है, भी शब्द नहीं कर रहा, बक ही उपविषमता, बक के साथ निकट बैठ रहे हैं उसी के समान चेष्टा कर रहे हैं। और कभी कभी अपने हाथ से सरोवर में ऐसे करते हैं, उनको पकड़ना नहीं है मछली, वो बंगाल और उड़ीसा नहीं है, वहां उनको मछली से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन वे बगुले की नकल करते हैं। बगुले का ध्यान बहुत प्रसिद्ध है, बको ध्यानम कहते, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई में, बको ध्यान। इस संसार में जब पाखंडी की तुलना की जाती है किसी धूर्त की, कि ऊपर से अच्छा वेष बना करके और मन में विषयों की अभिलाषा किया है, ऊपर से डिवोटी का रूप बना लिया और भीतर से विषय भोग की लालसा है, तो उसको बगुला भगत कहते हैं। देखने में तो लगेगा कि ये श्वेतांबर ध्यान कर रहे हैं, सरोवर या नदी के तट पर बैठ करके एक पैर से खड़ेसरी होकर ध्यान कर रहे, लेकिन ध्यान किस चीज का कर रहे? मछली कब उनके रेंज में आएगी असावधान होकर? बस यही ध्यान है। भेष बना लिए साधु का, वैष्णव का है, और बस स्त्री धन इत्यादि की कामना भरी हुई है, ये है बको ध्यान। ध्यान उत्कृष्ट वस्तु का होना चाहिए, भेष भले न हो, चित्त तो हाई जाना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग यही भगवान की लीला में मन रहना चाहिए। अगर खास करके किसी स्त्री या धन का चिंतन करने लगा व्यक्ति तो गया संसार से, भेष क्या करेगा। बच्चे वो तो नाटक कर रहे हैं, बगुले के साथ बैठ रहे हैं ध्यान। बकय रूप विषंतश्च नृत्यंतश्च कलापि भी, और कहीं कहीं मयूर नाचते हैं पंख फैला करके, तो कुछ बच्चे उसके साथ नाचने लगते हैं। कलापि भी नृत्यंत, मयूरों के साथ नाचने लगते हैं। विकर्षंत कीसबालान आरोहंतश्च तैर्द्रमान, कुछ बच्चे बानरों को खींच रहे हैं। किस का अर्थ है बानर, और बालन का अर्थ है बच्चे अथवा पूंछ। श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इसका अर्थ है पूंछ, बानर की पूंछ पकड़ करके खींचते हैं, तो बानर और उचक करके ऊपर जाने लगता है, तो उसकी पूंछ को पकड़ करके उसके साथ चढ़ जाते हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं इस तरह से। विकर्षंत किस बालन आरोहंतश्च तैर्द्रुमान, बानरों की पूंछ पकड़ करके खींचते हैं विकर्षंत। किसी बानर का पूंछ पकड़ा जाएगा तो वो तो और ऊपर भागेगा, वृक्ष पर भागेगा, तो आरोहंतश्च तैर्द्रुमान, तो तय ही उन बानरों के साथ ही उनकी पूंछ पकड़े पकड़े ऊपर चढ़ जाते हैं, अथवा एक हाथ से पूछ पकड़े है, एक हाथ से शाखा पकड़े उसके साथ चढ़ गए, डरते नहीं है। वृंदावन के इस समय के जो बानर हैं वे सब चश्मा पर्स छीन रहे हैं, लेकिन उस समय के बानर खाने के अलावा और कुछ चीज नहीं छीनते थे। भगवान की लीला के ये जीव हैं जिनके साथ भगवान खेले हैं खाए हैं। विकर्षण तक किस बाल, अथवा बानरों के बच्चों को पकड़ते हैं, यह अर्थ है किस बालान, बानर बालान बानर के बच्चों को पकड़ और उनके साथ वे चढ़ जाते हैं वृक्ष पर। वैसे ऐसे श्रीकृष्ण आदि बच्चे भी मुंह बनाते हैं, जैसे बानर करते हैं वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये सब बड़े बड़े भक्त हैं जो श्रीकृष्ण को सुख देने के लिए बानर बने हुए हैं। भगवान की लीला में तो बानर जैसा मुंह बनाना, धमकी देना, और खास करके बंदर घुड़की, बानर ऐसी घुड़की देता है कि बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य खत्म हो जाता है। लेकिन वो घुड़की भर होती है, बानर घुड़की दे रहा हो और आप अगर थोड़ा भी कुछ तानी ढेला या यहां तक कि माला झोली भी ऐसे, तो वो बहुत जल्दी भाग जाते, बहुत धमकी देता है बानर, और लगता है कि तो एकदम खा ही जाएगा, जान से मार देगा। तो श्री कृष्ण और अन्य सखा जन इस तरह से खूब खेल रहे हैं बानरों के साथ। विकुर्वंत मुख की विक्रिया करते हैं, और प्लवंतश्च पलाशिशु, और बानर के बच्चे या बानर जैसे जैसे वृक्षों पर तैर रहे हैं शाखाओं पर, नए नए शाखाओं पर इधर से उधर झूलना, लटकना, उछलना, ये बच्चे भी उनके साथ ऐसे कर रहे थे, ये भी झूल रहे थे शाखाओं में, या ये भी एक शाखा से दूसरे शाखा पर छलक कर चले जाते थे, उछल कर चले जाते थे, बानरों से सीख रहे थे। इतना फुर्तीला शरीर, आजकल के बच्चों में तो कोई दम ही नहीं है कि वो इस तरह से चढ़ें वृक्ष पर और बानरों के साथ खेलें। कितना स्वस्थ शरीर होगा लौकिक दृष्टि से भी कि बानर के साथ इस शाखा से उस शाखा पर, इस शाखा से उस शाखा पर खेलना, लटकना, झूलना, कभी मुख की विक्रिया करना, कभी उनकी पूछ पकड़ना, कभी उनके साथ चढ़ जाना, ये सब चलता रहता था। साकम भेकर विलंघंत सरित प्रसव संप्लुता, और कभी कभी मेढक के साथ, मेढकों के साथ भेकई, भे भे करोती इति भेक, जो भे भे करे उसको भेक कहते हैं, दर्दुर मेढक। इधर क्या कहते हैं उड़िया भाषा में आए? अच्छा, बेंग बेंग कहते हैं उधर बिहार में, बे बे गायती इति बेंग, बे बे करे, भे भे करे, जो भेक कहते हैं। ऐसा जीव है मेढक, बिना मतलब के भे भे करता ही रहता है हमेशा। केवल एक व्यक्ति पसंद किया इनकी आवाज को, मेढकों की आवाज को, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो वो कहते हैं कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जनु बट समुदाय। वर्षा काल में मेढकों की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, बोलते ही बोलते रहते हैं। उसी तरह से जैसे ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेद पढ़ते, अपना अपना पाठ है, एक विद्यार्थी ये परवाह नहीं करता है कि दूसरा कौन श्लोक पढ़ रहा है, तीसरा कौन पढ़ रहा है, तीसरा गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, वो अपना अपना पाठ करते जाते हैं। इस तरह मेढकों को कोई भी दूसरे की परवाह नहीं है, हमारा स्वर क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, बस बोलना है। इस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए मेढक की तरह। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो गुरु बना दिया मेढकों को, ब्रह्मचारियों का गुरु बनाया, उन्होंने पसंद किया, बाकी तो भे भे बस। श्रील प्रभुपाद जी इस पर लिखे हैं, मेढक अगर चुप रहे तो सुरक्षित रहेगा, उसका जो बोलना है उसमें खतरा पैदा कर देता है। अंधेरी रात है बरसात की, और मान लीजिए मेढक कहीं बोल रहा है, तो सर्प को तुरंत पता लग जाता है कि मेढक यहां पर इस क्षेत्र में इतनी दूरी पर बोल रहा है, और धीरे धीरे जाता है और पकड़कर खा जाता। अगर मेढक चुप रहे तो सांप को अपना शिकार पकड़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो निकट भी रहेगा तब भी वो चला जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो इस तरह से जो लोग फालतू बात बोलते रहते हैं भगवान के कीर्ति के अलावा, नाम के अलावा, उनका लिस्ट में नाम जमराज के हैं जल्दी आ जाता है कि ये फालतू सब बोल रहे हैं। दूसरी किताबें पढ़ना, सिनेमा देखना, और भी नाना प्रकार की जो बातें हैं, इसके कारण उनकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत पीटे जाते हैं। जमालय में बहुत पिटाई होती है उन लोगों की जो लोग फालतू बोलते हैं। ये जीभ है भगवान का नाम बोलने के लिए फिट की गई है शरीर में, न कि ऐसे जो मन करे वही बात बोल दो और खा लो। मेढक कीचड़ खाता है, मिट्टी का जो गंदा अंश होता है पानी में सड़ा हुआ वो खाता है भोजन, और ऐसे बिना मतलब के बोलता रहता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कचरा खाते हैं और इसके बाद कुछ भी बोलते रहते, ऐसे लोगों की तुलना मेढक से की गई, टर टर बोलते रहते। नरक में उनको बहुत सताया जाता है। तो भेक ही, मैं तो भगवान की लीला कह रहा हूं, वहां पर फिर ये उपदेश आ जाता है, खेद की बात क्षमा करेंगे। मेढक एक ऐसा जीव है जो पैर से बहुत कम चलता है, वो पूरे शरीर को उछालता है, देखे है ना, वो चलता है तो कहीं छलक करके उठ करके पूरा शरीर ही पटकता है। तो बच्चे मेढकों के साथ साकम भेकर बिलंघंत, मेढक जैसे जैसे उछलते हैं वे भी अपने पैर को पकड़ करके और उछलते हैं। इस कला में वे विशारद हैं। यदि हम लोगों को कहा जाए कि हम अपने पैर को बांध कर थोड़ा उछल, नहीं उछल सकते, तो बच्चे उछल सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे मेढकों के साथ उछलते थे, चाहे पानी में अथवा स्थल पर, बिलंघंत सरित प्रसर्व संभूता, छोटी छोटी नदियां जो भर जाती हैं, उनके तट भी भर जाते हैं, छोटे छोटे नाले जैसे, उसमें मेढक उछलते हैं और कभी कभी इस तट से उस तट पर चले जाते हैं बिलंघंत, तो बच्चे भी इस तट से उस तट पर छलांग मारते हैं, इस तरह से छलांग मारते। व्यसंत प्रति छाया, सपंत प्रति स्वनाम, कभी कभी बच्चे अपनी छाया को नदी में देखते हैं या सरोवर में तो हंसते हैं, अरे कह तुम कौन हो, तो इस पर फिर वो कहते हैं दूसरे से, कौन ये देखो कितना ढीठ है, मैं पूछा कि तुम कौन हो तो ये पूछ रहा है तुम कौन हो, देखो इसको। तो और बच्चे आ जाते हैं, अरे तुम कौन हो, मैं आऊं, ऐसा कहते हैं प्रतिछाया को, प्रतिछाया पर हसंत हंसते हैं, जैसे जैसे मुख बनाते हैं, अरे ये देखो ये तो हमारे जैसा शकल बना लिया, हमारे जैसा रूप बना लिया, तो वो कहता है कि ये तो हमारे जैसे रूप बना लिया, जैसे जैसे वो हाथ ऐसे, देखो तुमको एक तमाचा जड़ दूंगा, तो उधर से वो भी कहता है देखो एक तमाचा जड़ दूंगा, विहसन तो अब हंसते रहते, क्या है, कौन है, कहां से आ गया, ये पानी में क्यों वास किया है, पानी में क्यों रह रहा है, अथवा स्फटिक मणि पर्वत में अपने मुंह को देख करके कहते हैं, हंसते रहते हैं, हा हा हा, तो वो भी हंसता है, वो भी हंसता है, इस तरह से बच्चे आनंद में खेल रहे हैं। कृष्ण जो जो करते हैं वही ये बच्चे कर रहे हैं, वो देखते हैं कि वे प्रतिछाया को हंस रहे हैं तो ये भी अपने अपने प्रतिछाया पर हंसने लगते हैं। तुम्हारा कहां गांव है, अच्छा सपंत प्रति स्वनान, और अपने प्रतिध्वनि को गाली देते हैं, साप देते, प्रतिध्वनि होती है नदी के तट पर, नदी के जल के स्तर से ध्वनि टकराती है अथवा पर्वत से ध्वनि टकराती है, तो अपने ही प्रति स्वन को, अपने प्रतिध्वनि को गाली देते हैं, अरे अरे, उधर से आवाज टकरा कर आती है, मैं आऊं मैं आऊं, देखो ये कितना बदमाश है साला, तो उधर से भी वो कहता है साला कितना बदमाश है, अरे आज मैं इतना बर्दाश्त कर रहा हूं, तो वो कहता है मैं इतना बर्दाश्त कर रहा हूं, तुमको पता है मैं कौन हूं, तुमको पता है मैं कौन हूं, अच्छा अच्छा तुमको बता दूंगा, एक इस तरह से सपंत चपरती सुनन गाली देते हैं अपने ही शब्दों को। वो ये भावना करते हैं कि कोई बोल रहा है दूसरा, हमारी आवाज नहीं है। इस लीला में बच्चे इतना विभोर हैं, यहां तक कि श्री कृष्ण भी इस बात को सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते हैं कि मेरी ही ध्वनि टकरा कर आ रही, ये भगवान के लीला शक्ति की अद्भुत विशेषता है। वो सोचते हैं कि कोई दूसरा बोल रहा है, हमारे अनुकरण कर रहा है, हमारी नकल कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, अभी आया तो पीट दूंगा, इस तरह से वो बोलते हैं, तो अभी भी नहीं चुप हो रहा है, जवाब देता ही जा रहा है, और जिस वैल्यूम में बोलते हैं उसी तरह से वो भी बोल रहा है, अगर थोड़े स्वर में बोलते हैं तो वो भी धीरे बोल रहा है, ऊंचा बोलता है तो वो भी ऊंचा बोल रहा है, किसके पुत्र हो, किसके पुत्र हो, मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, तो वो भी कहता है मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, नंद बाबा का मैं एक ही लड़का हूं, तो वो कहते नंद बाबा का मैं एक ही लड़का, इस तरह अपने ध्वनि से ही परेशान हो रहे या आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार बच्चों के साथ भगवान के विहार का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्रज के उन बच्चों के सौभाग्य का अभिनंदन कर रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जः। जो प्रभु ज्ञानियों के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने वाले संतों के लिए केवल अनुभूति के विषय, उनके लिए ब्रह्म है, ब्रह्म सुख है और अनुभूति है। और जो भक्त भगवान को अपना आराध्य मान करके भजन करते हैं पर संभ्रम के साथ, उनके लिए श्रीकृष्ण केवल पर देवता के रूप में ही रहते हैं, सखा के रूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जो लोग मायाश्रित है, माया के बंधन में है, वे लोग श्रीकृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं। वो श्रीकृष्ण से मिलने वाला सुख नहीं ले पाते हैं, श्रीकृष्ण के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रभु के साथ वे बच्चे विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, कृतपुण्य पुंजा। निश्चित ही इन बच्चों ने पूर्व पूर्व जन्मों में राशि राशि पुण्य किया है, बहुत पुण्य किया है, तब श्रीकृष्ण के साथ इनको खेलने का अवसर मिल रहा है। तो तीन बातें यहां पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानम परदैवतेन, और तीसरा है माया श्रितानम नरदारकेण। हम लोग सुनते हैं पहले या आज भी कुछ सुनते हैं कि कुछ लोग भगवान का साक्षात्कार करते हैं, केवल ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार कर पाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है प्राकृत धारणाओं से और प्राकृत वस्तुओं से परे भगवान के अप्राकृतत्व का मनन कर पाते हैं। ये जानते हैं कि भगवान अप्राकृत हैं, केवल चिंतन करते हैं। यह बात जरूर है कि रूप का चिंतन करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, तो इसको ब्रह्म सुखानुभूति कहते हैं, ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण उनके लिए केवल ब्रह्म सुख के विषय मात्र रह जाते हैं, भगवान कृष्ण के साथ उनका कोई संबंध नहीं स्थापित हो पाता। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने ऑफिस में बैठा है, अपने घर में है और कहीं कोई दूर है, वह व्यक्ति ऑफिस में बैठे हुए का केवल चिंतन करे, यहां तक कि फोन भी नहीं कर पावे, केवल चिंतन करे, और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ खेल रहा है, बात कर रहा है, चाहे पति पत्नी का संबंध करके या सखा सखा का संबंध करके या और किसी भी तरह से संबंध करके जो उसके साथ रह रहा है, उसमें कितना अंतर होगा? बहुत अंतर होगा। इस संसार में लोग यह समझते हैं कि ईश्वर निराकार है, अवश्य वह प्रकृति से पार है, गुणातीत है, गुणों से परे है, और केवल इतना ही मान करके संतोष कर लेते हैं। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, ये है अलख निरंजन, यह हुआ नाना प्रकार। देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और फिर संबंध स्थापित करने का और उसके साथ खेलने का, यह तो बहुत दूर की बात है। तो जितने भी उच्च कोटि के तथाकथित संत महात्मा होते हैं, हुए हैं, श्री कृष्ण को एक ब्रह्म के रूप में और उनसे मिलने वाले सुख की अनुभूति के रूप में ही साक्षात्कार कर पाते हैं। बहुत दूर श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध होता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण हमारे इस तरह प्रीति के भी विषय हो सकते हैं, कृष्ण हमारा पुत्र बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम बन सकते हैं, यह धारणा उनको है ही नहीं। तो यह जो सताम जो ज्ञानी होते हैं उनके विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि वो बहुत आज्ञ हैं, उस तरह से जैसे कोई चावल प्राप्त करने के लिए चावल की भूसी को कूटे, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। किसी व्यक्ति को मान लीजिए भूख लगी है और वह तूस को कूट रहा है बार बार, पहले ढेंकी होती थी, पता नहीं इधर क्या कहते हैं, चावल कूटने के लिए लकड़ी का, इधर भी ढेकी कहते हैं। अच्छा अच्छा, श्रील प्रभुपाद जी कहावत में कहते हैं कि ढेकी स्वर्ग में भी जाएगी तो उसको कूटना ही पड़ेगा। कहावत बंगला में भी ढेकी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को खूब भूख लगी है, दो चार दिन तक भोजन नहीं मिला है और कहे भोजन चाहिए भोजन चाहिए, तो उसको कोई व्यक्ति कृपा करके तुस दे दे, ऐसा चावल का छिलका जिसमें कोई चावल नहीं है, चावल निकाल लिया गया है, केवल तुस भर है, तो तुस को कई बैग में भर करके दिया गया है, पर्वत प्रमाण है, पर्वत जैसा कि इसको कूटो 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 इसमें से चावल निकलेगा। तो वो बेचारा मर जाएगा कूटते कूटते, हाथ पैर में दर्द होगा, भूख से तो मर ही रहा है, चावल मिलेगा नहीं। तो इस तरह से कुछ लोग कूट रहे हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं और भागवत नहीं सुनते हैं पढ़ते हैं, भगवान भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग व्रत उपवास और नाना प्रकार के ब्रह्मानुसंधान क्या क्या करके सोचते हैं हमको भगवान मिल जाएगा, हमको भगवान मिल जाएगा। वो काहे को मिलने जाए, केवल दर्द मिलेगा, जैसे वो तुस को कूटने वाले को केवल दर्द मिलेगा और कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह सोचते हमको ज्ञान हो जाए, मैं मोक्ष प्राप्त करूं, मैं संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं, मुक्त होते नहीं है और धसते जाते हैं बंधन में। संसार में इस बात पर बहुत जोर दिया गया, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, किसका ध्यान करो ये नहीं बताते हैं, बस ध्यान करो। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जिनका कोई संबंध नहीं है, केवल दूर से चिंतन मात्र कर पाते हैं, उन्हीं प्रभु के साथ ही बच्चे खेल रहे हैं। तो शतान से और बालका नाम से जरा तुलना कीजिए, ये कितनी ऊंचाई पर है और वे ज्ञानी लोग कितने तुच्छ हैं, कितने निम्न स्तर पर हैं। भगवान को देखने का उनको कभी सौभाग्य नहीं मिलेगा, भगवान से बात करने का, न भगवान के साथ आलिंगन करने का, न झूला झुलाने का, न भोजन कराने का, और फिर अपने भाव को व्यक्त करने का भगवान के साथ उनको कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दास्यम गतानम परदैवतेना, यहां तक कि जो लोग दास्य भाव से भगवान का भजन करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं और वही जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, ब्रह्मा शिव आदि के वही स्वामी हैं, सभी जीवों को कर्म बंधन में वही बांध रखे हैं, मुक्ति उनके हाथ की चीज है, इस तरह से मान करके अपना कर्तव्य मान करके जो दास बन गए हैं और श्रीकृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके लिए श्रीकृष्ण पर दैवत के ही रूप में रहते हैं। अर्थात वे भक्ति करते हैं लेकिन भगवान के साथ निःसंकोच प्रेम का व्यवहार नहीं हो पाता है। भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन में भाव यही रहता है श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम दीनहीन जीव हैं, श्री कृष्ण प्रभु हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तो इस भाव से जो भजन करते हैं वे भी श्री कृष्ण से एक प्रकार से बहुत दूर ही रह जाते हैं। तो ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में जो चिंतन करते हैं वो तो बहुत दूर हैं, लेकिन दास मान करके जो अपने को दास मान करके श्री कृष्ण का भजन करते हैं, वह भी श्री कृष्ण के साथ इस तरह से असंभ्रम व्यवहार नहीं कर पाते। और फिर जो माया के वश में है वे तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने की बात क्या रही, वो तो सोचते हैं तो नरदार किरण है, तो मनुष्य का बच्चा है, इसे क्या प्रेम करना है, वे भी दूर रह जाते हैं। सुकर्मी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तीन प्रकार के जीव हैं इस संसार में साधक जीव, तो कहते हैं ज्ञानी भक्त और कर्मी। तो ज्ञानी के विषय में तो कहा गया वो लोग भगवान के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, जब शुरू में ही मान लिए कि निराकार है भगवान तो उनको अब दर्शन क्या होगा, पहले ही धारणा है कि भगवान निराकार है दिव्य ये है वो है, अपने धाम में रहता है, धाम कहां है ये भी पता नहीं, कब देखोगे तो कहते कभी नहीं, वो तो अलख है, उसे लख ही नहीं सकते, बस यही फिलॉसफी है उनकी, उसको देखा ही नहीं जा सकता। देखा ही नहीं जा सकता था ये कौन सा संबंध है। किसी की कोई पत्नी है, किसी का कोई पति है, पूछे कि तुमने पत्नी को देखा है, नहीं वो तो अलग है, हमारी ऐसी पत्नी है जिससे कभी भेंट होगी ही नहीं, हमारा ऐसा पति है जिससे कभी भेंट होगी, उसका कोई रूप है ही नहीं, ये पागलपन है कि नहीं। जो दुनिया को बनाया और दुनिया में इतना सुंदर सुंदर रूप बनाया है, उस भगवान का ही कोई रूप नहीं है। ये सोचिए कैसा गंदा विचार है। जो इतना सुंदर रूप बना सकता है, देवता बना सकता है, मनुष्य बना सकता है, और वो भगवान स्वयं ही निराकार भूत है ना, उसको कोई रूप नहीं। तो यह जो धारणा है यह बहुत गलत धारणा है। वास्तव में भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर रसिक हैं, परम रसिक, परम आत्मीय, स्नेह है उनके हृदय में जीवों के प्रति, वे चाहते हैं कि जीव हमसे संपर्क करे। गीता में बार बार उपदेश किए हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम श्रेय प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही प्रिय हूं सबका, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सब कुछ भगवान कहते हैं। तो इस तरह से जो मायाश्रित हैं, माया के वश में हैं, वे तो दूसरे जीवों को अपना मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को तो अपना मानते ही नहीं। अपने घर में कोई बच्चा होता है तो उसको कहते हैं कि मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है, मेरा है, मेरा है, लेकिन श्री कृष्ण को मेरा मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उनको, तो वे वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण वास्तव में सबके लिए सुलभ हैं, जैसे ब्रज के बालकों के लिए सुलभ हैं, वैसे प्रत्येक जीव के लिए वे सुलभ हैं, परंतु भाव हो तब तो मिलेंगे ना। तो जो ज्ञानी है वे भी कृष्ण से बहुत दूर रह जाते हैं, कृष्ण को देखने की और खेलने की तो बात ही नहीं। जो स्वामी मानकर कृष्ण का भजन करते हैं अवश्य उन्हें भक्ति सुख मिलता है, लेकिन वे भी इन बच्चों जैसे सौभाग्यशाली होने का तो दावा कभी कर ही नहीं सकते। श्री कृष्ण से उनका जो व्यवहार होता है वो संकोच से भरा रहता है। ऐसे प्रभु के साथ साकम विजरहु कृतपूर्ण पुंजा, ऐसे प्रभु के साथ ही बच्चे खेल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, निर्बाध रूप से विहार कर रहे हैं। कृतपूर्ण पुंजा, इन्होंने अपने अनेक जन्मों में बहुत बहुत पुण्य किया है, बहुत बहुत पुण्य किया है। इसी को फिर कर्मुत न्याय से कहते हैं, जद पाद पांसुर बहुजन कृच्छतो धृतात्म भीर जोगी भीराप्य लभ्य स एव जद्रिग विषय स्वयं स्थित किं वाण्यते दिष्ट मथो ब्रजौ कशाम। अरे इन सखाओं के, इन बच्चों के सौभाग्य की बात तो दूर रही, जो लोग श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को केवल देखते हैं उनके भाग्य को क्या कहा जा सकता है। बच्चों के भाग्य को तो छोड़ दीजिए, जो पशु पक्षी कीट पतंग श्री कृष्ण को ब्रज में देखते हैं उनका कितना बड़ा भाग्य है। बच्चों के भाग्य को तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, लेकिन और भी जो श्रीकृष्ण का दर्शन करते हैं वे बहुत भाग्यशाली। जतपाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर जोग भीर अप्य लभ्य, ऐसे बहुत से योगी होते हैं जिन्होंने अपने चित्त को धृतात्म भी, अपने मन को पकड़ लिया है, बस में कर लिया है। कैसे? कृच्छतो, यम नियम आदि करके, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि लगाते हैं, और इस तरह से बहुत बहुत परिश्रम करके कृच्छतः, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय हो चुके हैं पूरा पूरा, आत्मा को मन को वश में कर लिए हैं बहुत परिश्रम करके बहुत बहुत जन्मों में, ऐसे योगियों के लिए भी जिनके चरण का एक रज भी बहुत दुर्लभ है। जदपाद पांसु, पाद का अर्थ चरण और पांसु का अर्थ धूली, जत्र चत्र कहीं गिरा हुआ एक चरण के संपर्क में आया हुआ एक धूली भी दुर्लभ, एक कण भी रज का दुर्लभ है। किसके लिए? जितेंद्रिय जोगियों के लिए, कोटि कोटि जन्मों में जिन्होंने योग साधना किया है और मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगियों के लिए भी जिनके चरण का एक रज भी दुर्लभ है, वही प्रभु स्वयं जिन ब्रजवासियों के आंखों के सामने हैं, उनके भाग्य को कौन कह सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस बात का वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित की सभा में। किम वर्ण्यते दिष्टमथो ब्रजौ के साम, ब्रज जिनका ओक है, आवास है, ऐसे ब्रज की गौए, ब्रज के पक्षी या अन्य पशु, कीट पतंग, इनके भाग्य को कौन कह सकता है, जहां परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण स्वयं आकर के उपस्थित, स्वयं वृंदावन में जाते हैं, भगवान स्वयं ही वहां दर्शन देते हैं वनवासी जीवों को और ब्रज में रहने वाले जीवों को, स्वयं दर्शन देते हैं। सएव जदृग विषय स्वयं स्थित, जदृग विषय जिनके आंखों के विषय श्रीकृष्ण स्वयं बनते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं उन ब्रजवासियों के, भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। और फिर जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उन ब्रज शिशुओं के भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता जो श्री कृष्ण के साथ इस तरह खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में मुख्य रूप से सौख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव का वर्णन किया गया है। यहां पर हम लोग सौख्य रस की कथा सुन रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्प्रिहा व्यक्त कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है उन ब्रज के जीवों का जिनके आंखों के विषय श्रीकृष्ण बने हुए हैं, जो साक्षात देख रहे हैं श्रीकृष्ण। ब्रह्मज्ञानी लोग केवल चिंतन मात्र कर पाते हैं बड़े मुश्किल से श्री कृष्ण का, दर्शन नहीं हो पाता है। और फिर दर्शन के भाग्य को ही नहीं कह सकते हैं तो फिर खेलने का साथ में उसको कौन कह सकता है। श्रील विश्वनाथ श्रील सनातन गोस्वामी जी एक अर्थ करते हैं, जतपाद पांशु बहुजन्म कृष्ण तो धृतात्म भीर जोग वीर लभ्य पादप अंशु, पाद पांशु का पादप अंश, पादप का अर्थ वृक्ष, वृक्ष पैर से पीते हैं धरती का रस, पादप पाद माने चरण, प माने पीने वाले, चरण से वे भूमि का रस खींचते हैं तो पादप कहते हैं। और अंशु का अर्थ है किरण छटा, जिनके वृंदावन धाम के एक वृक्ष की छटा को, अंशु को प्राप्त करना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बहुत साधना करके जिन्होंने चित्त को वश में किया है, उनके लिए भी वृंदावन के एक वृक्ष का दर्शन बहुत दुर्लभ है, एक छटा, एक झलक मिलना दुर्लभ है। और वही प्रभु जिनके आंखों के विषय बने हुए हैं, उनके भाग्य को कौन वर्णन कर सकता है। बड़े बड़े योगियों के लिए वृंदावन के वृक्ष का दर्शन भी दुर्लभ है। जो लोग वृंदावन जाते हैं वास्तव में वो राधा रानी की कृपा से जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि आदमी प्रवेश कर जाए कुछ देखे, भगवान की कृपा जब होती है किसी जीव पर तब वो वृंदावन में प्रवेश करता है। इतना दुर्लभ है ब्रज के वृक्ष का दर्शन, गिरिराज का दर्शन, जमुना का दर्शन, ब्रज के रज का दर्शन, ब्रजवासी मोर का दर्शन या और भी जीवों का, मनुष्यों का दर्शन, ये बहुत दुर्लभ। तो जिनके धाम में रहने वाले वृक्ष का दर्शन भी बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही प्रभु जिनके आंखों के विषय बने हुए हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य की कौन सराहना कर पाएगा, कौन समर्थ है उसका पूरा पूरा वर्णन करने में। और फिर उन ब्रज गोपों के, उन सखाओं के भाग्य को कौन कह सकता है जिनके साथ श्रीकृष्ण नित्य विहार कर रहे हैं। बिना संकोच के श्रीकृष्ण के साथ सटना, खेलना, खाना, वर्णन करना, नाचना, गाना, कंपटीशन लेना, इस तरह से जो श्रीकृष्ण के साथ खेल रहे हैं, उन बच्चों के भाग्य की सराहना, उन बच्चों के भाग्य का वर्णन तो न तो भगवान शेषनाग कर सकते हैं, न शिव जी कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, न सरस्वती, कोई भी नहीं कर सकता है, इतने भाग्यशाली वे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर अपने बहुत ही स्प्रिहाजुक्त भाव को व्यक्त कर रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि वे तरस रहे हैं कि वो मैं क्यों नहीं कृष्ण का सखा बन करके उनके साथ हूं, इस तरह की स्प्रिहा होती है। और जब भगवान की लीलाओं को सुनकर बहुत बहुत बातों को, बहुत बहुत पद पोजीशन, तो उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। आप किसी की पढ़ाई के विषय में सुनिए कि वह इतना पढ़ा, इतना क्वालिफिकेशन लिया, तो इतनी बड़ी सर्विस मिली, ये मिला, वो मिला, वो विदेश यात्रा किया, यह किया, तो एक अपने मन में स्पृहा होती है, क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम सुन करके, भगवान की लीला सुन करके मन में यह लालसा उत्पन्न हो कि मैं भी श्रीकृष्ण की नित्य लीला में हो, मैं भी श्रीकृष्ण के साथ खेलू, तब यह है मनुष्य जीवन की सिद्धि। तब माना जाएगा कि इस व्यक्ति का चित्त बिल्कुल शुद्ध है और कृष्ण लीला में सम्मिलित होने की इसकी स्पृहा हो रही है। तो इस तरह से बच्चे श्रीकृष्ण के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं। अब इसके बाद एक ऐसा प्रसंग आ रहा है जिसको आज कहना ठीक नहीं है, प्रकरण का अंतर होगा, अघासुर आएगा, तो इसीलिए इसको कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।